सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने आप सबको एक प्रश्न का उत्तर पढ़कर सुनाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबने बहुत ध्यान से मेरे उस डेली ऑडियो लेक्चर को सुना होगा, और सुनने के बाद मैंने जो आप सबसे एक अर्ज किया था, अनुरोध किया था कि आप उसका मूल्यांकन करें, शायद उस पर भी थोड़ा सा वक्त लगाया होगा। अगर नहीं लगाया हो तो मुझे लगता है कि फिर आप अगर इसी तरह से चीजों की उपेक्षा करते रहेंगे तो मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं आप एक गलती तो कर रहे हैं, और हर गलती के अपने अपने परिणाम होते ही होते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं फिलहाल अपने को गलत नहीं समझ रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो बिल्कुल आप मुझे ईमेल लिख करके बता सकते हैं, मैं फिर से अपने बारे में विचार करूंगा। और वो ये कि अगर आपको एक सही उत्तर लिखना है तो आपको दो बातें तो मालूम होनी चाहिए। पहली बात यह कि गलत उत्तर क्या होता है या कमजोर उत्तर क्या होता है, तभी तो आप सही उत्तर को समझ पाएंगे। आप ये बताइए कि अगर आपको यही नहीं मालूम होगा कि अच्छा उत्तर होता क्या है, या आप अच्छे और थोड़े से कमजोर उत्तर में अंतर नहीं कर सकेंगे, ये क्षमता आप में नहीं है, तो फिर आप एक अच्छा उत्तर लिख कैसे सकेंगे। इसका मतलब है कि ठीक है, स्टूडेंट के रूप में आप एक परीक्षार्थी के रूप में उत्तर लिख रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उस परीक्षार्थी के साथ साथ आपके अंदर एक एग्जामिनर भी होना चाहिए, मूल्यांकन करने वाला भी होना चाहिए? तभी तो आप अपने उत्तर का मूल्यांकन कर सकेंगे, तभी तो आप समझ सकेंगे कि नहीं, एक अच्छे उत्तर के कौन कौन से गुण होते हैं। और जब आप किसी उत्तर को पढ़ रहे हैं, उत्तर को सुन रहे हैं, तो फिर आप ढूंढेंगे कि इस उत्तर में वे गुण हैं या नहीं है, और यदि वे गुण नहीं है तो सीधी सी बात है कि वह उत्तर सही नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, या यूं कह लीजिए कि जितने गुण आपको उसमें मिल जाएंगे उसके अनुसार आप उससे नंबर दे देंगे। आपके साथ भी तो यही होने जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि यदि आपने ऐसा नहीं किया होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ये सही नहीं किया, आपको ऐसा करना चाहिए था। ठीक है, आज तो मैं अपने ढंग से मूल्यांकन करूंगा और आपको बताऊंगा भी, लेकिन प्लीज फ्यूचर में ऐसा ना करें। तो आइए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि जब आप मूल्यांकन करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं जानता हूं कि आपके सामने लिखित रूप में उत्तर नहीं थे, लेकिन आप इसका उपाय तो निकाल ही सकते थे। उपाय क्या हो सकता था? उपाय यह हो सकता था कि आप बकायदे जो डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने उत्तर पढ़कर सुनाया है उसे आप सुन सकते थे। एक बार में समझ में बात नहीं आएगी, एक बार में आ भी नहीं सकती है, तो दो बार सुन सकते थे, तीन बार सुन सकते थे, चार बार सुन सकते थे, किसी ने मना तो नहीं किया है, और टेक्नोलॉजी आपको यह सुविधा उपलब्ध करा रही है। अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो मान करके चलिए कि आपके दिमाग में कोई एक अवरोध है, और यह ऐसा अवरोध है जो आपको सिविल सर्विस के मंजिल की तरफ आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपको उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। हम लोग आइडेंटिफाई करते थे, जो करना है उसे करना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर आप दूसरों को दोष देंगे, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से सिविल सर्विस क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, जबकि आप जब ढूंढेंगे तो पता लगेगा कि बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। जब मैं अपने विरोधियों को ढूंढने चला तो पता लगा कि मैं ही अपना सबसे बड़ा विरोधी था। आप दो बार सुन सकते थे, तीन बार सुन सकते थे, जितनी बार की जरूरत है आप उतनी बार उसे सुन सकते थे, और सुनने के बाद आप पॉइंट्स निकाल सकते थे। चलिए, खैर कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे बड़ी जो बात होती है वो यही कि प्रश्न आपकी समझ में आया है या नहीं आया है। मैं 99% आप सबके बिहाफ पर यह कह सकता हूं कि आप सबको प्रश्न समझ में आ गया है, इसमें पूछा क्या जा रहा है। और फिर मैं 99% आप सबके बिहाफ पर यह कह सकता हूं कि उत्तर क्या लिखा जाएगा यह समझ में नहीं आया है। हाँ, मुझे माफ करिएगा ये बात कहने के लिए, मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बात कह रहा हूं, क्योंकि यदि आपको लिखित रूप से यह उत्तर पढ़ने को मिल रहा है और एक निर्देशन के तहत मिल रहा है, तो मैं समझ सकता हूं कि फिर स्टूडेंट क्या कर रहा होगा, क्योंकि जब यह प्रश्न पढ़ा गया, पढ़ने के बाद इसका उत्तर तैयार किया गया, तो इत्मीनान के साथ ही किया गया होगा, इस पर विचार किया गया होगा। इसका उत्तर तैयार करने के लिए जिसने भी उसका उत्तर लिखा है उसके पास सामग्रियां होंगी, इतिहास की किताब होंगे, मूर्तिकलाओं की किताब होंगी, वहां से बकायदे वो तथ्य जुटा सकता है, कुछ तो विचार किया ही होगा इससे पहले। लेकिन क्या आप ये मुझे बताएं कि जो प्रश्न पूछा गया है और जो उत्तर आपको पढ़ने को मिला उनमें सामंजस्य है? आप एक काम कीजिए, और वो काम ये कि आप प्रश्न को भूल जाइए कि प्रश्न क्या था, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, और आप उत्तर को पढ़िए, केवल उत्तर पढ़िए, और उत्तर को पढ़ने के बाद फिर अपनी तरफ से प्रश्न तैयार कीजिए कि यदि उत्तर यह है तो इसका प्रश्न क्या होगा। आपको ध्यान होगा कि जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे या कॉलेज से जब और भी पहले पढ़ रहे थे, तब एक अपठित गद्यांश आता था, एक गद्यांश आता था और कहा जाता था कि इसका शीर्षक बताइए। ध्यान होगा आपको, जनरल हिंदी वगैरह में ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे। आप इसे यही समझ लीजिए कि इसका शीर्षक बताइए, और जो शीर्षक है वही इसका प्रश्न है। तब आप पहली बार शायद चौंक उठेंगे, और केवल इस प्रश्न से नहीं चौंकेंगे, आप अपने दिमाग की सोच पर भी चौंकेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी यही करता हूं, मुझसे भी यही गलतियां होती रहती हैं। और इसका सबसे दुर्भाग्यजनक पक्ष यह है कि हम ऐसी गलतियां करते रहते हैं और कोई हमारा ध्यान इधर नहीं दिलाता है कि हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं। कैसे कोई ध्यान दिलाएगा बताइए, क्योंकि जो ध्यान दिलाने वाले हैं वो इस तरह की ही बातें कर रहे हैं, तो फिर ध्यान दिलाएगा कौन। लेकिन मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा कि यूपीएससी की जब कॉपियां जांची जाती हैं तो वे जो जांचने वाले जो एग्जामिनर होते हैं वो बहुत मैच्योर होते हैं, बहुत वरिष्ठ लोग होते हैं, बहुत अनुभवी होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, और साथ ही साथ वे बहुत जिम्मेदार होते हैं। उनसे इस तरह की गलतियां नहीं हो सकती, वे इस तरह की भूल कभी नहीं करेंगे। इसीलिए आप ये संभावना तो देखिए ही मत कि शायद वहां कुछ बात बन जाए, नॉट एट ऑल, वहां कोई बात नहीं बननी है। वहां तो अगर आप सही लिखकर आएंगे तो बात बनेगी, और नहीं लिखकर आएंगे तो बात नहीं बनेगी। जैसा लिखकर आएंगे उसी के समानांतर बात बनेगी। इस यथार्थवादी सूत्र पर तो आपको कोई डाउट कम से कम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद इस उत्तर को सुनने के बाद आपको मेरी इस बात पर थोड़ा बहुत यकीन होना शुरू हो जाए कि जो सबसे बड़ी चुनौती है आंसर राइटिंग की, वह प्रश्न को समझने की ही है। और मैंने जानबूझकर यह बहुत ही सरल सा प्रश्न चुना है, जानबूझकर, और भी बहुत सारे प्रश्न मेरे सामने थे लेकिन मैंने जानबूझकर चुना, इसलिए कि यदि सरल से प्रश्न के साथ यह दुर्घटना घट सकती है तो ऐसे प्रश्नों के साथ क्या होगा जो बहुत ही जटिल हैं। अगर राजमार्ग पर मैं गाड़ी चला नहीं पा रहा हूं तो पगडंडियों पर क्या चला पाऊंगा, यही बात हुई ना। विचार कीजिए प्रश्न क्या है। देखिए, मैं अब थोड़ा सा इसका विश्लेषण करता हूं, स्पष्ट करें। जो निर्देश दिया गया है को कुछ नहीं, आप केवल क्लेरिफाई कीजिए, स्पष्ट कर दीजिए। किस बात को स्पष्ट करने के लिए कह रहा है कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला, सीधे सीधे मध्यकाल की बात कर रहा है, मिडिल एज की बात कर रहा है। और आप जानते हैं कि मध्यकाल, जो मध्यकालीन हम भारत कहते हैं, इतिहास में आपने पढ़ा है, उसकी शुरुआत कब से होती है, तो सीधे सीधे मध्यकालीन भारत शब्द है, मध्यकालीन भारत। और फिर मंदिरों की मूर्तिकला, यहां भी वो कह रहा है कि जो मंदिरों में जो मूर्तिकलाएं हैं, और भी अगर प्रस्तर की प्रतिमाएं बनाई गई होंगी तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अब यह बात अलग है कि उस समय अगर कहीं मूर्तियां बनती थी तो मंदिरों में ही बनती थी, वो एक अलग बात है। लेकिन समझने की दृष्टि से आपको अपने दिमाग को जहां रिस्ट्रिक्ट करना है, अपने दिमाग की चारों तरफ जो मर्यादा की रेखाएं खींचनी है वहां मंदिरों की मूर्तिकला। अगर हम चलिए मंदिर को हटा दें, क्योंकि उस समय मूर्तिकलाएं मंदिरों से ही संबद्ध होती थी, तो दो मर्यादाएं स्थापित हो गई। पहली मर्यादा मध्यकालीन, मिडिल एज, दूसरा मूर्तिकला। ये दो मर्यादाएं हो गई उस दौर के, यानी कि उसी पर्टिकुलर समय के, उस दौर का को उस पर्टिकुलर समय के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। जो तीसरी मर्यादा है या तीसरा जो बिंदु है वो है सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ। हमारा जो ये जीवन है ये बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। इसका आर्थिक पक्ष भी है, इसका सामाजिक पक्ष भी है, इसका राजनीतिक पक्ष भी है। इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो इतिहास में आप क्या पढ़ते हैं? केवल राजा महाराजाओं के युद्ध और कहानियां ही तो नहीं पढ़ते हैं। एक पर्टिकुलर जब आप किसी राजा के बारे में पढ़ रहे हैं, शासक के बारे में पढ़ रहे हैं, गुप्त काल पढ़ रहे हैं या मौर्य काल पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ते हैं ना कि उस काल का सामाजिक जीवन कैसा था, उस काल का राजनीतिक जीवन कैसा था, उस काल का धार्मिक जीवन कैसा था, सब पढ़ते हैं ना, आर्थिक जीवन कैसा था। तो ये तो आपको मालूम है कि जब सामाजिक जीवन की बात कही जा रही है तो उसका क्या मतलब होगा। तो तीन मर्यादाएं हो गई। पहली मर्यादा मध्यकाल, दूसरी मर्यादा मूर्तिकला और तीसरी मर्यादा सामाजिक जीवन। हो गया क्लियर? आइए अब हम इसकी शुरुआत को देखते हैं, या आप यूं कह लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा कि मैं आज अपनी बात यहीं खत्म कर दूं, क्योंकि वक्त भी हो चला है। मैंने आपको कुछ सूत्र दे दिए, क्लू दे दिए हैं कि मर्यादाएं क्या हैं इस प्रश्न की, इस प्रश्न में वो जानना क्या चाह रहा है। अब प्लीज आज आप मेरी बात मान लीजिए, प्लीज मान लीजिए। कल के डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने जो उत्तर पढ़कर सुनाया है उसे सुनिए, कई कई बार सुनिए, और फिर इन तीनों मर्यादाओं को उसमें ढूंढिए कि कितनी है, कितनी नहीं है, हैं तो फिर क्या है, क्या उसका संबंध प्रश्न से है, नहीं है। प्लीज इसके बारे में थोड़ी सी जांच परख कीजिए, और जांच परख करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट भी तैयार कर लीजिए। मैं तो आगे फिर बात करूंगा ही, तो आज मुझे अब इजाजत दीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त भी करता हूं। नमस्कार।